Шидэж. Шидэж. एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
नमस्कार श्रोताओं, आपको पता है कि विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से क्षितिज नाम का कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं, और आज हमारा सौभाग्य है कि आज भी हम आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि विश्व हिंदी सचिवालय का यह कार्य है कि विश्व के कोने कोने में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें, और इस तरह प्रचार करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है, और समय समय पर विदेश से विद्वानों को यहाँ पर बुलाया जाता है ताकि वे हमारा मार्गदर्शन कर सके। और इसी प्रकार आज हमारे लिए यह अति हर्ष की बात है कि हमारे बीच में आदर्श शर्मा जी आए हुए हैं, जो भारत में जन्मे हुए हैं लेकिन अब तंजानिया में रह रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में आज भी हिंदी के प्रति अपार प्रेम है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनके शब्दों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न होंगे, आपको हर्ष का एहसास होगा। तो देर न करते हुए चलो हम मिलते हैं आदर्श शर्मा जी से। आदर्श शर्मा जी नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार शम्भू साहब।
सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को कृपया अपना संक्षेप परिचय दीजिए।
जी, मेरा नाम आदर्श शर्मा है और मैं भारतीय मूल का हूँ। पिछले 24 साल से मैं तंजानिया में रह रहा हूँ। तंजानिया मेरी सिटीजनशिप है, लेकिन अभी भी हृदय में भारत ही बसता है, तो इसलिए हम भारत की ही बात करते हैं। भारत का रहने वाला हूँ, हिंदी में बात बताता हूँ, तो जब जब कहीं कहीं हमें किसी को बोलना होता है तो हम हिंदी ही बोलते हैं। जहाँ तक बस चलता है, कोई नहीं समझेगा तो हम दूसरी भाषा में जाते हैं। हमारा पहला चॉइस जो है, प्रायोरिटी है, वो हिंदी बोलना ही है। तो वहाँ पे हमारा अपना इंश्योरेंस का काम है, और उसके साथ में हम हिंदी भाषा का उत्थान के लिए काम करते हैं, और भारतीय संस्कृति के लिए काम करते हैं, और भारतीय खेलों का भी काम करते हैं।
बहुत अच्छी बात है, मुझे जानकर और हमारे श्रोताओं को भी जानकर यह बहुत खुशी हुई होगी कि आप दूसरे क्षेत्र में होते हुए भी हिंदी से इतना प्रेम करते हैं। आदर्श जी, जैसे कि हमें पता चला, हमने आपको देखा कि आयोजन पर विश्व हिंदी सचिवालय के आयोजन में आपने रामायण पर, बल्कि रामचरितमानस पर कुछ बहुत ही अच्छी बातें बताई, और यहाँ तक कि गाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप रामचरितमानस से इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं?
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रामचरितमानस हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है जी। हमने जब से होश संभाला, हम रामायण की कुछ पंक्तियाँ, रामचरितमानस की पंक्तियों को ही कानों से सुनते आए हैं अपने माता पिता के माध्यम से। वो चलते फिरते कोई ना कोई पंक्ति दोहराते थे, हमें नहीं पता था कि ये रामचरितमानस की हैं। लेकिन फिर जब वो रामचरितमानस पढ़ते थे, हम थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने हमको भी उत्प्रेरित किया कि आप पढ़ा करो। और फिर हमने पहले हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर धीरे 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 ऐसे करके हमारा, मतलब मुझे याद है जब मैं 12-13 साल का था तो हमारे घर पर पूरे अखंड पाठ हुआ था। अच्छा, और अच्छा। मैं आधी रात जग के मैंने वो पढ़ा था। हालांकि अशुद्धताएं थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे हमने पढ़ा, लेकिन जब से हमारा फिर आत्मविश्वास बढ़ने लगा धीरे धीरे।
बहुत अच्छी बात है। चलते हुए मैं यहाँ भी संकेत कर दूँ, मॉरिशस को हम रामायण का देश भी बोलते हैं।
बहुत अच्छा।
यहाँ पर एक रामायण सेंटर भी है, और कई बार यहाँ पर रामचरितमानस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हो चुके हैं।
बहुत अच्छा। बहुत,
और यहाँ भी आप जाएंगे गांव में तो बैठकाओं में तो लोग रामायण की चौपाइयों को गाते हैं, दोहे सुनाते हैं, और उसकी व्याख्या भी करते हैं। यह भी बता दूं कि यहाँ के पाठ्यक्रम में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक रामायण या रामचरितमानस तुलसीदास रचित ये पाठ्यक्रम में लागू है और बच्चे बड़े चाव से पढ़ते हैं। अच्छा, आगे मैं यह पूछना चाहूँगा कि आप तांजानिया में रहते हुए भी हिंदी से अब तक जुड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है?
इसका एक ही कारण है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और माँ से आदमी कहीं चला जाए अलग नहीं हो सकता है, और बल्कि जितना दूर जाता है उतना जो प्रेम है वो गुण होता है। वही हुआ जब हमने हिंदुस्तान छोड़ा तो उसके बाद में हमें और हिंदी से प्रेम हुआ और हमने सोचा कि नहीं हिंदी के उत्थान के लिए करें। और आज की दिन में हम आपको बताएं कि न सिर्फ हम हिंदी आपस में अपने लोगों के साथ में बोलते हैं, कितने ही वहाँ के लोकल हमारे बच्चे हैं, तंजानियन बच्चे हैं, उनको भी हमने हिंदी सिखाई है।
अच्छा,
अभी यहाँ इस प्रोग्राम में भी एक बच्चे ने, वो तंजानिया का ही था, क्लिपिंग दिखाया था, क्या नाम, भजन गाता है, मंत्र बोलता है। तो इस तरह से करके हम लोकल लोगों में, हम इंडियन हाई कमीशन के थ्रू बच्चों को स्कॉलरशिप पे भेजते हैं।
अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप रामचरितमानस से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपने सुंदरकांड की कुछ बातें बताई, आप कृपया उसमें दिलचस्पी क्यों लेते हैं ज़्यादातर सुंदरकांड में?
जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, रामचरितमानस के 7 कांड हैं, 7 कांड में से सुंदरकांड को ही क्यों चुना जाता है, सुंदरकांड का ही क्यों अध्ययन किया जाता है, ये एक बहुत उचित सवाल है। देखिए, रामचरितमानस का पहला कांड है बाल कांड, जिसमें भगवान की बाल लीलाओं का जिक्र है, कैसे भगवान इस धरती पे पैदा हुए हैं, उसके बाद में फिर उनका कैसे विवाह हुआ, फिर वो कैसे वन में गए, फिर अरण्य कांड तक आते आते सीता जी, सीता माता का अपहरण हो जाता है, और उसके बाद में हम किष्किंधा कांड में आते हैं जब उनको ढूंढने की तैयारी चलती है। लेकिन जब हम सुंदर कांड में आते हैं तो हमें अपने आप ही ऐसे लगता है कि अभी कुछ अच्छा होने वाला है।
जी हाँ जी,
अगर कोई आदमी पहली बार इस पुस्तक को पढ़े तो उसको लगेगा कि यहाँ दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है इसका, इस पूरी कहानी का। जैसे हम एक पिक्चर देखते हैं तो वहाँ पे कुछ सैड मोमेंट्स चल रहे होते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे जाके लगता है कि अभी हीरो को विजय प्राप्त होगी। तो सुंदरकांड में वही होता है। हनुमान जी को पता है आपको कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास नहीं था, उनको जब तक कोई याद ना दिलाए उनको पता नहीं चलता था। तो जामवन जी ने उनको किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे में, जो 29वां दोहा है, उसमें उनको याद दिलाया है कि आपकी ये शक्तियां हैं, आपका जन्म जो है वो राम काज के लिए ही हुआ है।
अच्छा,
तो हनुमान जी फिर बोलते हैं कि फिर सुंदरकांड में रामचंद्र जी की स्तुति है और हनुमान जी की स्तुति है, फिर वो लंका जाते हैं, लंका जाते पे उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सुंदरकांड हमें ये भी प्रेरणा देता है कि कितनी भी बाधाएँ आपके जीवन में आ जाएँ, आपको हार नहीं माननी चाहिए।
ठीक, बहुत अच्छी बात है।
खासकर हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है।
हाँ,
कि मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड हफ्ते में एक बार जरूर पढ़ें, और हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ें, अगर जल्दी है स्कूल जाते हुए तो चलते चलते पढ़ लें।
नहीं, यहाँ पर ऐसा चलता है, हनुमान चालीसा बहुत बच्चों को कंठस्थ
याद। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
हाँ, शायद इसीलिए तुलसीदास जी ने इसका नाम सुंदरकांड ही रखा है।
हाँ,
इस ग्रंथ का सबसे सुंदर ही कांड है,
सुंदरकांड है। हाँ, और दूसरे जिस वन में सीता जी रहती थी उस वन का नाम भी सुंदर वन था।
अच्छा, हाँ, हाँ,
तो इसलिए ये। और दूसरा, बचपन में उनकी माता, हर माँ जो है अपने बच्चे को बहुत सुंदर मानती है, तो हनुमान जी को वो सुंदरी कहा करती थी।
अच्छा अच्छा,
तो क्योंकि इसमें ज़्यादातर वर्णन हनुमान जी का है, पूरे हनुमान जी इस सुंदरकांड के पूरे वही हीरो हैं, तो इसलिए भी एक कारण ये भी है कि इसका नाम सुंदरकांड है। और सुंदरकांड करने से ये माना जाता है, और मेरी तो अपनी ये महसूस मैं करता हूँ कि अगर आप सुंदरकांड करते हैं तो आपके लिए कोई काम भारी नहीं रहेगा।
हाँ,
बेशक उस काम का जो ध्येय है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, युक्ति संगत होनी चाहिए, और वो जनता के हित में होना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं और सुंदरकांड को पढ़ के करते हैं, वो हमेशा आपका काम सफल होगा और आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ठीक है, सुंदरकांड हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी है। अच्छा आदर्श जी, आप तांजानिया में रहते हैं, भारत में आपका जन्म हुआ, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तांजानिया में हिंदी की स्थिति क्या है अभी।
जी देखिए, तंजानिया में स्थिति, तंजानिया की पॉपुलेशन करीबन 60 मिलियन लोग हैं वहाँ पे।
अच्छा अच्छा
और जिसमें हमारे लोग, हिंदुस्तान से आए हुए लोग बहुत कम हैं। अगर आप परसेंटेज देखें तो वहाँ पे इवन लेस देन 1 लाख से कम होंगे, ठीक है सारे। और हिंदी अभी धीरे धीरे वहाँ प्रचलित हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि अभी हम वहाँ पे स्कूलों में बच्चों को ट्यूशन देते हैं, हम मंदिरों में बुलाते हैं बच्चों को, और जब मैं बोल रहा हूँ बच्चों को तो हम लोकल तंजानियन बच्चों को बुलाते हैं।
अच्छा अच्छा
कि आप आइए हिंदी सीखिए, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। और कुछ बच्चे जो अच्छे से सीख जाते हैं उनको हम भारत भेजते हैं, इंडियन हाई कमीशन से रिकमेंड करते हैं कि आप इनको कुछ अनुदान दीजिए, कुछ रिकमेंड कीजिए, तो स्कॉलरशिप पर वो बच्चे जाते हैं। कई बच्चे हमारे गए हुए हैं वहाँ पर।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात सुनकर हमें भी प्रेरणा मिलती है, यहाँ से भी हम ऐसा प्रबंध करवा सकते हैं, कर भी सकते हैं। अच्छा, आपने विश्व हिंदी सचिवालय में बहुत अच्छी तरह से रामचरितमानस के दोहे चौपाई गए, तो मुझे खुशी होगी यदि आप हमारे पाठकों के लिए, हिंदी प्रेमियों के लिए एक दो पंक्तियाँ गाकर सुनाते।
जी देखिए, यूँ तो पूरा सुंदरकांड जो है वो बहुत प्रेरणा से ओतप्रोत है, एक एक शब्द उसका आपको बल मिलेगा। लेकिन कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे शुरू में ही है, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो उनको लंकनी नाम की जो राक्षसनी मिली थी और उसको जब उन्होंने मारा था तो उसने उनको कहा, उसने बोला कि अरे मैं समझ गई हूँ कि तुम वानर आए हो, तुम राम भगवान के दूत हो और अब तुम यहाँ पे हमारे बुरे दिन चले गए। मतलब लंका के लोग भी उस समय बहुत खुश नहीं थे रावण से। तो उसी ने रामचंद्र जी को बोला कि आप लंका में प्रवेश करो, और उसका दोहा था, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसका मतलब यह है कि आप भगवान राम को अपने हृदय में रख के और प्रवेश कीजिए लंका में, आपके सारे काम सिद्ध होंगे।
जी जी,
और ये मेरा संदेश है सबको कि ये वाली जो चौपाई है, आप कहीं किसी अपने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बच्चे किसी इम्तहान के लिए जा रहे हैं, बच्चे किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये वाली पंक्ति बोल के जाएं, एंटर करते मन मन में बोल लें, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा।
ठीक, बहुत अच्छी बात बताई, और आपने हमारे देश के हिंदी प्रेमियों को भी प्रेरित किया। अंत में आप संदेश के रूप में क्या देंगे?
संदेश तो मेरा यही है कि, और ख़ासकर बच्चों से और नौजवानों से है, कि वो हनुमान को अपना आदर्श बना लें, अपना मॉडल बना लें, अपना रोल मॉडल बना लें, हैं, और आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना उत्थान होगा, आपके जितने भी जो आप सोचेंगे वो होगा, हैं। क्योंकि एक जगह कहा है तुलसीदास ने, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम असकही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो आपको अपार संपत्ति, संपत्ति से मतलब नहीं पैसे से नहीं है, आपको ऐश्वर्य मिलेगा, आपको सौभाग्य मिलेगा, आपको सुंदर भविष्य मिलेगा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। एक बार आप इसको करके देखिए, देखिए आपके जीवन में सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। यही मेरा संदेश है।
बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मनुष्य हमेशा से सुख और शांति की तलाश में रहता है, और रामचरितमानस ही वह ग्रंथ है जो आदमी के, मनुष्य के मन मस्तिष्क में वह समा जाते हैं और लोग उनसे दिलचस्पी लेते हैं। यहाँ पर जब हमारे पूर्वज लोग आए थे, अत्याचार सहते थे, तो शाम को रात्रि में छिप छिपा कर रामचरितमानस का ही सहारा लेते
बहुत,
थे।
बहुत अच्छा।
श्रोताओं, आज हमने विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से क्षितिज कार्यक्रम में हमारे विद्वान आदर्श शर्मा जी से आपकी मुलाकात करवाई, और उन्होंने रामचरितमानस, विश्व में हिंदी की स्थिति और विशेष रूप से तांजानिया में हिंदी की स्थिति क्या है, इन सभी बातों पर प्रकाश डाला। मुझे पूरा विश्वास है कि इनसे आपको लाभ हुआ होगा, और एक बार फिर से हम आदर्श जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे स्टूडियो में आने के लिए, और विश्व हिंदी सचिवालय को भी आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उनके सौजन्य से आप यहाँ पर आ पाए। और समाप्त करने से पहले मैं अपने सहायक डोमिनिक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उनकी सहायता से हमारी आवाज़ अब तक पहुँची। तो यहाँ पर हम कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। आशा है कि आपने इससे लाभ उठाया होगा। अगली बार हम फिर एक नया कार्यक्रम लेकर और एक नए विद्वान के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रेम भरा नमस्कार। आदर्श जी बहुत बहुत
नमस्कार आपको, बहुत बहुत अच्छा लगा।
आपके लिए शुभ यात्रा की कामना करेंगे और जीवन में सुख के लिए कामना।
मुझे भी मॉरिशस आके इतनी अच्छी अनुभूति हुई है कि जैसे मैं अपने परिवार में आ गया हूँ, अपने घर आ गया हूँ। बहुत अच्छा लगा। सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रिसेप्टिव है, बहुत वेलकमिंग है, सब अच्छे हैं। बच्चों को मैं सुबह देखता हूँ, स्कूल से जाते हैं हमारे, उसके बहुत अच्छे सब हैं बच्चे। तो सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद,
नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।